मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 24 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस लेक्चर में मैं आपसे सामान्य अध्ययन का जो फोर्थ पेपर है जनरल स्टडीज का, जो आपके इंटीग्रिटी एथिक्स से संबंधित है, उसके सिलेबस के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा। हालांकि मुझे मालूम है कि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पिछले दो दिनों के मेरे इस विषय पर आधारित लेक्चर को सुनकर के थोड़े से निराश हुए होंगे या निराशा का अनुभव कर रहे होंगे कि सर ने अभी तक फालतू की बातें की हैं, टॉपिक्स पर तो बताया ही नहीं, सिलेबस में जो कुछ बताया गया है उसके बारे में तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं है और फालतू फक्कड़ की बातें कर रहे हैं कि तैयारी कैसे करें, रोड मैप क्या होता है, सरल कठिन क्या होता है, और थोड़ी बहुत निराशा आप लोगों के हाथ जरूर लगी होगी। मित्रों, मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जान रहा हूं कि गलती मुझसे नहीं हो रही है। अगर आप उसे सही अप्रोच से नहीं देख पा रहे हैं या मैं उसे समझा नहीं पा रहा हूं तो यह एक गलत काम हो सकता है आपके पार्ट पर भी और मेरे पार्ट पर भी, लेकिन इसे जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आप अपना जो ओल्ड पैटर्न है प्रिपरेशन का, उस माइंड को ड्रॉप करना पड़ेगा और नए तरीके से ही चीजों को आपको देखना पड़ेगा, नए तरीके से उन पर विचार करना पड़ेगा और नया अपना सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम नया बना लेंगे तो तैयारी आसान हो जाएगी और सिस्टम पुराना रखेंगे तो डेफिनेटली ये तैयारी उतनी ही कठिन रहेगी। इसलिए मित्रों, ना चाहते हुए भी आप मुझे सुने, मुझे बर्दाश्त करें। कुछ समय के बाद आप जरूर पाएंगे कि जो आपने मुझे सुना और जो इतना बर्दाश्त किया उससे आपको नुकसान होने की बजाय बहुत अधिक लाभ ही मिला है। हाँ, इस रियलाइजेशन को थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आप मुझ पर विश्वास कीजिए और वह वक्त मुझे आप सब दीजिए। तो अब मैं फिर से किसी टॉपिक को लेकर बात न करके मैं अब आपसे सिलेबस के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में एक परिदृश्य बन सके कि जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो है किस तरीके का। इनफैक्ट मैं सिलेबस के पॉइंट्स आपसे नहीं चर्चा करने जा रहा हूं, मैं उसके स्वरूप के बारे में बताने जा रहा हूं, उसका फॉर्मेट कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, या यूं कह लीजिए कि उसका स्वाद कैसा है, केवल इसकी जानकारी मैं थोड़ी सी देना चाह रहा हूं। उससे होता क्या है कि हमारी जो प्रिपरेशन है जाने अनजाने में बड़ी इंटरकनेक्शन वाली हो जाती है, चीजें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और उस विषय के बारे में जो हमारी अप्रोच है वो भी एक पॉइंट पॉइंट वाइज ना होकर के बड़ा सिस्टमेटिक किस्म की हो जाती है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ाव हो जाता है। तो देखिए, ये जो आपका फोर्थ पेपर है उसके लिए जो इस्तेमाल किया गया है पेपर के नाम के रूप में, उसमें तीन शब्द हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये आपके पेपर का नाम है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ये तीन नाम उसमें दिए हुए, ये आपके पेपर का नाम है। तो डेफिनेटली ये तीन अलग अलग तत्व हैं, इन तीनों तत्वों पर हम लोग बात करेंगे कि नीति शास्त्र क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है और अभिरुचि क्या है, इन तीनों पर हम लोग बातें करेंगे, राइट? तो ये तीन जो तथ्य हैं, इसे आप अपने इस चौथे पेपर का तीन मुख्य स्तंभ मान लीजिए कि ये तीन पिलर्स हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मित्रों, इसके दो पिलर्स और हैं, लेकिन मैं उस दो पिलर्स में से सिर्फ एक पिलर्स को इसके साथ जोड़कर देखता हूं, और जो पांचवा पिलर्स है वो आपके बहुत ही फेवर में है, उसे हम कहीं और तलाश करेंगे, तो यहां से हटा देते हैं ताकि हमारा ये पेपर आसान हो जाए। इसलिए नहीं कि आसान नहीं है, इसलिए कि आप अगर पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर इस तरीके से तैयारी करते आ रहे होंगे तो ये जो फिफ्थ पिलर है इसकी तैयारी आप पहले से कर चुके हैं। इसीलिए मैंने इसके केवल फोर पिलर्स माने हैं, जिसमें एक है एथिक्स यानी कि सत्यनिष्ठा, दूसरा है एटीट्यूड इंटीग्रिटी और है एटीट्यूड सत्यनिष्ठा, नीतिशास्त्र सत्यनिष्ठा और अभिरुचि एप्टीट्यूड। ये तीन तो आपके मेन पिलर्स हो गए, और इसी के साथ ही साथ एक और पिलर भी है जो पेपर के नाम में नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जब आप अनसॉल्व पेपर देखेंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस पर कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं और अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रश्न पूछे ही नहीं गए हैं, लेकिन याद रखिए कि जो आपका आधा पेपर है, जो केस स्टडी का पेपर है, जब तक आप इमोशनल इंटेलिजेंस पर अपनी पकड़ नहीं बनाएंगे तब तक आप केस स्टडी को सॉल्व कर ही नहीं सकेंगे। मतलब मुझे लगता है कि जो केस स्टडी वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस ही है, हर मामले में इमोशनल इंटेलिजेंस है, लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरे तत्व भी है। यानी कि केस स्टडीज का जो मेन पिलर है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, और उसको असिस्ट करने वाले जो पिलर्स हैं वो और भी ढेर सारे तत्व हैं। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम के रूप में ये आपको मानकर चलना चाहिए कि यह विषय चार मुख्य पायों पर खड़ा है, स्तंभों पर खड़ा है। उसमें एक है नीति शास्त्र, दूसरा है सत्यनिष्ठा, तीसरा है अभिरुचि और चौथा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। इन पर आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। इसके बाद जब आप अनसॉल्व पेपर देखेंगे तो उसमें दूसरी चीजों के बारे में भी छोटी छोटी टिप्पणियां पूछी जाती हैं। सेवा भाव क्या होता है, प्रेम क्या है, करुणा क्या है, कानून क्या है, इन सब के बारे में भी, आचरण संहिता क्या है, ये सब के बारे में पूछा जाता है। जब आप डिटेल में सिलेबस देखेंगे तो पाएंगे कि आगे चल करके जब आप सिविल सर्विस वाले हिस्से में एंटर कर जाते हैं तो सिविल सर्विस के संदर्भ में इन सब की बातें हुई हैं और बकायदे आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। तो जो पांचवा पाया जो मैं आपसे कह रहा था मित्रों, वो पांचवा पाया है सिविल सर्विसेज का पाया। देखिए, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, राइट? तो सिविल सर्वेंट बनने के लिए किस तरह की सत्यनिष्ठा चाहिए, किस तरह का आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरह के वैल्यूज होने चाहिए, किस तरह के एथिक्स होने चाहिए, आप में भी और पूरे के पूरे प्रशासन में भी, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपके सिलेबस में है। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सारा का सारा हिस्सा तो आप जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन बहुत सा हिस्सा है वो आप पढ़ भी चुके हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। देखिए, सिविल सर्विसेज के क्या सिद्धांत होते हैं, सिविल सर्वेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, करप्शन क्या चीज है, इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। फिर आपने ये भी पढ़ लिया है कि प्रशासन में पारदर्शिता क्यों जरूरी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है, नागरिक चार्टर अधिकार क्या होते हैं जिसको आप सिटीजन चार्टर्स कहते हैं, इन सब के बारे में आप जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, आप सिलेबस उठा करके देखें तो आप पाएंगे कि वो चीजें सेकेंड पेपर में भी हैं और वही चीजें फोर्थ पेपर में भी हैं। तो इस तरीके से फोर्थ पेपर का सिलेबस आपका कट हो जाता है, काफी कम हो जाता है। मित्रों, अगर मैं इस फोर्थ पेपर के टोटल आवर्स की बात करूं, और मैं ये बहुत ही ईमानदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि इस पेपर की तैयारी में पढ़ने के हिसाब से तो नहीं कह रहा हूं, अब आपकी अपनी स्पीड है, आपकी अपनी समझ है, क्योंकि पढ़ाई जब हम करते हैं किताबों से तो बहुत सी चीजें इधर उधर की भी होती हैं, लेकिन हम उन चीजों से गुजर कर ही महत्वपूर्ण चीजों तक पहुंच पाते हैं, तो कितने घंटे लगेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट, कोई प्रोफेसर इस विषय का जानकार, अगर इस पूरे सब्जेक्ट पर आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए लेक्चर देने का प्लान करे तो मैं समझता हूं कि 40-50 घंटों में वो बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे विषय को समाहित कर सकता है, समेट सकता है। अब आप सोच करके देखिए कि अगर एक विषय 40-50 घंटे में आपका तैयार हो जाता है तो क्या वो लेंदी है? 40-50 घंटे क्या मायने रखते हैं किसी एक विषय को तैयार करने में? और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी आप इसके बारे में काफी कुछ जानते हैं, ये तो पता लगा कि उन्हीं चीजों को समझाने के लिए बहुत ज्यादा समय लग रहा है। ऐसा इस पेपर के साथ नहीं होगा। पढ़ने के मामले में आप इसे डबल कर लीजिए, क्योंकि आप ये भी एक किताब पढ़ेंगे नहीं, 2-3 किताबें पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे कि कौन सा चैप्टर कहाँ अच्छा मिल रहा है, आप उसमें उसको देखेंगे, उसमें निशान लगाएंगे। तो बट नेचुरल है कि जब आप सुनते हैं तो जो सुनाने वाला है वो तो बहुत छांटी हुई चीजें आपके सामने पेश करता है, तो वहां घंटे कम लगते हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आपके घंटे थोड़े से बढ़ जाते हैं। हाँ, यदि आप सुन करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कुछ घंटे कुछ कम हो जाएंगे, राइट? तो जितने भी आप आवर्स उसमें ऐड करना चाहें मित्रों, आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सिलेबस के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई। डिटेल में आप सिलेबस देख लीजिएगा, उसके बारे में मैं अभी आपसे कुछ भी कहने नहीं जा रहा हूं। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि जो सेकेंड जो पार्ट है इसका, जो केस स्टडी का है, उसके बारे में अलग से चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप फर्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं उसी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सेकेंड पार्ट है। आप अगर फॉरेन कंट्रीज में जाएं, जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, आपका ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, कैम्ब्रिज है, इन सब यूनिवर्सिटीज के आपने नाम सुने हैं, इसमें जब आप एमबीए वगैरह करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां जो टोटल पढ़ाई का जो स्वरूप है उसमें जो लेक्चर्स होते हैं, क्लास लेक्चर्स, वो हार्डली 30-40% होते हैं। बाकी पूरा का पूरा समय केस स्टडी में दिया जाता है, आपसे केस स्टडी सॉल्व कराए जाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच के माध्यम से आप खुद ही उसके सिद्धांतों को समझ लेते हैं। देखिए, ये जो पेपर है इसी तरह का है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप सब इसके बारे में जानते हैं, सब जानते हैं, ऑलमोस्ट जानते हैं, किताबों से पढ़ करके उसे सिस्टम के तहत ला रहे हैं बस। तो वहां भी पढ़ाई का पैटर्न जो हायर एजुकेशन है उसका पैटर्न यही है कि आप पहले अनुभव ले लीजिए या केस स्टडीज कर लीजिए और इसके बाद उसे पढ़ लीजिए या पढ़ करके केस स्टडीज कर लीजिए, तो वो चीजें बहुत ही पुख्ता हो जाती हैं, जिसे आप लैब कह लीजिए। जैसे साइंस का स्टूडेंट पहले पढ़ता है और लैब में जाकर के उसी को प्रैक्टिकल करता है, ठीक उसी तरह से है कि पहले आप फर्स्ट पार्ट में इसके सिद्धांतों को जानते हैं, चीजों को समझते हैं, और सेकेंड पार्ट में जो आपने समझा है उसके आधार पर उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, बस दैट इज ऑल, वो प्रैक्टिकल करते हैं। दोस्तों, ये जो विषय है, जब आप पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये दो शास्त्रों का मिलन है, दो तरह के साइंस इसमें समाहित हैं और उसी पैटर्न से आपको पढ़ना पड़ेगा। नंबर वन, ये एक मूलतः साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, याद रखिए। लेकिन आपको साइकोलॉजी नहीं पढ़ना है, मतलब आप डर मत जाइएगा कि साइकोलॉजी पढ़ना होगा, नॉट एट ऑल। लेकिन इसमें साइकोलॉजी है और वो आपकी अपनी साइकोलॉजी है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, व्यावहारिक साइकोलॉजी है, आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। साइकोलॉजी के साथ साथ इसमें सोशियोलॉजी भी है, क्योंकि देखिए, जो हमारी साइकोलॉजी बनती है वो हवा में नहीं बनती है, है ना, वो सोसाइटी से बनती है। तो इसमें आपको दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, साइकोलॉजी भी और सोशियोलॉजी भी। इस रूप में मैं कहता हूं या कहना चाहूंगा कि ये जो पेपर है बहुत ही व्यावहारिक पेपर है, ये आपके जीवन में भी बहुत मदद करेगा। भले ही सिविल सर्विस में हो नहीं हो एक अलग बात है, लेकिन मान करके चलिए कि ये विषय आपके साथ रहेगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो नौकरी आपके साथ रहेगी, अगर नहीं भी होगा मान लीजिए दुर्भाग्य से, तो ये विषय तो आपके साथ रहेगा ही। इसीलिए इस विषय पर थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा मनोयोग से आप इसे पढ़ें। दोस्तों, दो तीन बातें मैं और आपसे कहना चाहूंगा, आप पढ़िए लेकिन बहुत बुकिश मत बनिए, पढ़िए लेकिन बहुत बुकिश मत बनिए, मतलब कि रटिए मत, बस केवल समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें अपने शब्दों में ढालिए, मन ही मन दोहराइए, अपनी शब्दावलियां लेकर आइए। मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूं कि अगर आप बुकिश बने तो मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएंगे, इसमें मुझे कम से कम थोड़ा सा संदेह जरूर है। दूसरी बात, जब आप लिखें तो आपकी जो अप्रोच हो वो आइडियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए, मतलब आदर्श वाली बातें नहीं होनी चाहिए कि साहब आप आदर्श की बातें कर रहे हैं या बड़े उपदेशवादी होकर के बातें कर रहे हैं, जैसे पंडित पुरोहित और गुरुजी लोग होते हैं ना, बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, फनाला बोलो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं। क्योंकि आप तो सिविल सर्वेंट बनेंगे और सिविल सर्वेंट बनने के रूप में आपको चीजों का सामना करना पड़ेगा, उनके हल ढूंढने पड़ेंगे, तो आपको तो बहुत ही व्यावहारिक होना होगा। व्यावहारिक होना और उपदेशवादी होने में बहुत फर्क है, उपदेश देना बहुत आसान है लेकिन उस उपदेश के आधार पर 10% चल पाने में भी पसीना निकल जाता है। तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए, याद रखिए कि वो बहुत ही व्यावहारिक होनी चाहिए, आदर्शवादी या उपदेशवादी नहीं। आखिरी बात, कि आपके उत्तर ऐसे नहीं लगने चाहिए कि आपने जबरदस्ती लाकर के कहीं से थोप दिया है, यानी कि जबरदस्ती आप किसी चीज का सलूशन निकाल रहे हैं, या जब आप मामले सुलझाएंगे, केस स्टडी में जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आपने जो काम किया है उस काम को आपने क्यों किया उसका कारण बताना पड़ेगा, और कारण की बताने में आप कुतर्क का सहारा ले रहे हैं, तर्क का सहारा नहीं ले रहे हैं, कुतर्क, ये भी कुतर्क है कि भैया मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया, या इस मामले में मुझे अपने विवेक का सहारा लेने का अधिकार था, तो इस तरह के विवेक का सहारा लेने का अधिकार तो जनरल डायर को भी था 1919 में जो उसने अमृतसर में गोली चला दी, तो क्या हम उसको सही माने? तो उसको सही मानना कि नहीं मेरा तो ये अधिकार था, मुझे यही ठीक लगा तो मैंने यही किया, तो ये एक तरीके से आज के संदर्भ में और खासकर हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो प्रणाली है, लोक कल्याणकारी राज्य की प्रणाली है, उसमें फिट नहीं बैठती, तो इसे कुतर्क माना जाएगा। तो आपको कुतर्क से भी बचने की कोशिश करनी पड़ेगी, राइट, पड़ेगा। और यह मान करके चलिए कि जो आप बात कर रहे हैं वो भारतीय संदर्भों में कर रहे हैं, भारतीय समाज के संदर्भों में कर रहे हैं, तो बात करते समय आपको बकायदे भारतीय समाज, भारत के लोग, भारत के लोगों की सोच, ये नहीं कि केवल नियम और कानून ध्यान में रखना है, उनकी सोच क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, वो किस तरह से प्रतिक्रियाएं करते हैं, उनकी जरूरतें क्या है, इन सबको दिमाग में रखते हुए आपको अपने उत्तर लिखने होंगे। इसे ही मैंने कहा है कि आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो बहुत ही व्यावहारिक होनी चाहिए। तो मित्रों, ये कुछ बातें हैं मुझे इसके सिलेबस के बारे में आपसे करनी थी, और आप पाएंगे कि केवल इतना ही सुनने के बाद जब आप अब किताबें पढ़ेंगे तो आपके पढ़ने की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी होगी, और ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। मुझे इजाजत दें, नमस्कार।